وقال الذی آمن یا قوم، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کروں گا. اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے. من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلہا، جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت پہ جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں. اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جس کا کوئی علم مجھے نہیں دیا گیا، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو، وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں. کوئی بات نہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. یہ تھی آیت نمبر 38 سے 45، 38 سے 48. اس کا عنوان ہے ان قریب مجھے یاد کرو گے. یہ جملہ اس کا ہائی لائٹ کر لیجئے. میں اس جملے کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جیسے کوئی بوڑھا باپ دنیا سے جا رہا ہے، بچوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور بچے اس کی بات نہیں سنتے، اور پھر کیا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن مجھے یاد کرو گے. اور ہر بزرگ جاتے ہوئے دنیا سے یہی پیغام دے کے جاتا ہے کہ میری زندگی میں تم جس بات کو نہیں مان رہے، کل یاد کرو گے. کسی باپ کے بولے ہوئے لفظ یاد آ رہے ہیں، کہا دیر سے گھر آنے پہ بچوں کو غصہ آتا ہے نا، یا کیوں باپ پوچھتا ہے، یا رات تک کیوں جاگ رہے ہیں، جیسے تو کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہوگا، تم دیر سے آؤ گے، جلدی آؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اور حقیقت ہے کہ بعد میں میں نے ان کے بچوں کو اس بات پہ بھی آہیں بھرتے دیکھا کہ اب تو کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی، ہم آئیں نہ آئیں گھر. اسی طرح سچے دل سے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی دعوت دینے والا شخص اتنا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ تم جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن لوگ اس وقت اس کی قدر نہیں کرتے. ان کو بچوں کی طرح کھیلنا ہوتا ہے، ابھی ابھی ان کو سونا ہے، ابھی ان کے فن کے دن ہیں، کھیل کے تماشوں کے دن ہیں. اور جو بچے بچپن میں نہیں پڑھ لکھ پاتے نا، تو بڑے ہو کے وہ پھر کبھی بھی اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں ہائے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیوں نہیں سختی کی، پھر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں کہا. تو اسی طرح ان آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت رقیق سا نکتہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ پکارے، پھر لوگ اس کے ساتھ برا عمل کرنا چاہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. ایسے لوگ اللہ کی مدد میں ہوتے ہیں، جیسے پیچھے ہم سورہ یاسین میں پڑھ چکے نا، حبیب کی جان لے لی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے کاش یہ لوگ جان جائیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا. یہی حال اس مرد مومن کا تھا. لوگوں کو کیوں برے لگتے ہیں ایسی نصیحت کرنے والے؟ لوریاں دینے والے تو لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک محفل ایسی اٹینڈ کی ہے، شوق تھا کہ میں دیکھوں. یقین کریں اللہ جھوٹ نہ بلائے، کچھ 700-800 سے لے کے 1000 تک کی خواتین ہوں گی، زرق برق کپڑوں میں، چمکیلوں میں، پھر کھانے پھر پینے. اور حالات وہاں کے یہ تھے کہ پردے کا بھی اہتمام نہیں تھا، اور لوگ جا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. میں سوچتی تھی یہ 1000 کو اگر ہم درس کی دعوت دیں تو اس وقت کتنے لوگ آئیں گے. وہ دین بہت آسان لگتا ہے جس میں فضائل اعمال، یہ کر لو تو اتنا ثواب، جھوم لو، نعتیں پڑھ لو، گھوم لو، کچھ درود پڑھ دو، نبی کی زلفوں کی باتیں، ان کی پتہ نہیں کیا کچھ. اور جہاں سنجیدہ تعلیم ہوتی ہے نا، تو ہم سوچتے ہیں کیا کریں، جائیں کہ نہ جائیں، کیا خیال ہے، ایسے ہی نہ گزارا ہو جائے. کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پسند قریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہتا تھا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے. اللہ نے بچا لیا، اب فرعون کی قوم کے ساتھ کیا حال ہوا، उसका तذکرہ अगली आयतों में है। अन्नारु युरदूना अलैहा, आग है जिसके सामने ये सुबह शाम लाए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, फरमान होगा कि फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डालो। और जबकि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग तकबर वालों से जिनके ये ताबे थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे पैरों थे, तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? वो बड़े लोग जवाब देंगे, हम तो सभी इस आग में हैं, अल्लाह तआला अपने बंदों के दरमियान फैसले कर चुका। और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगों से कहेंगे कि तुम ही अपने रब से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कमी कर दे। वक़ाल अल्लज़ीन फ़िन्नार लिख़ज़नति जहन्नम अद्उ रब्बकुम युख़फ़िफ़न्ना यौमं मिनल अज़ाब। आप इस शिद्दत को महसूस करें। कोई बड़े मुश्किल हालात में ना, मैंने देखा है कुछ लोग बड़े बीमार होते हैं ना, दर्द की वजह से सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो वो तड़प रहे होते हैं, कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, मैं आज सोना चाहता हूँ, मैं आज सोना चाहता हूँ, बस मेरा होश ख़त्म हो जाए, मुझे बहुत दर्द है, मैं बड़े दिन से थका हुआ। और रिवायात में आता है कि जहन्नमी पुकारेंगे, चीख चीख के पुकारेंगे, खूब शोर मचाएंगे, हमारी सुनो, हमारी सुनो, कोई नहीं बोलेगा। तो फिर वो सोचेंगे, अच्छा हम बोल रहे थे ना, तो शायद इनको हम पे तरस नहीं आया, ऐसा करते हैं कि हम चुप रहते हैं कुछ अरसा, बिल्कुल चुप करके मस्कीन से बन के रोनी सूरत के बनते हैं, शायद अल्लाह को तरस आ जाए। फिर कितना अरसा ऐसी शक्लें बना के रहेंगे, किसी को परवाह भी नहीं होगी। फिर कहेंगे अब हमारी नहीं सुनी गई, गार्डमैन है उनके जाके कहेंगे तुम कहो, अल्लाह से कहो बस एक दिन अजाब कम कर दे, सिर्फ एक दिन इसकी हीट कम कर दे, इसका टेम्परेचर ही कुछ कम कर दे। जवाब क्या मिलेगा? इस जवाब को सुनते जाइए और हाईलाइट करते जाइए। खालू अवलम तकुताती कुम रुसुलुकुम बिल बैजीनात। वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मोजज़े लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है। अल्लाह अकबर, रसूल का इनकार, अपने दौर में रसूल का इनकार और बाद में रसूल की तालीमात का इनकार। ऐसे लोग फिर वहाँ हसरत करेंगे कि कोई हमें यहाँ से निकाल दे और हम बच जाएं इस आग के अजाब से, इस बुरे अजाब से बच जाएं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे मामले से बचा के रखे। ये थी आयत नंबर 46 से 50, 46 से 50। इन आयतों का टॉपिक है रसूल की तकजीब की सज़ा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंजर है, और वाकई आप इसको महसूस करेंगे तो कुछ बोलने को तो दिल ही नहीं करते इन आयतों को पढ़ने के बाद। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद जिंदगानी दुनिया में भी करेंगे, और इस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को इनके उजर माजरत कुछ नफा न देगी, इनके लिए लानत ही होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता फरमाया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया कि वो हिदायत और नसीहत थी अकलमंदों के लिए। ये थी आयत नंबर 51 से 54, 51 से 54। इन आयतों का टॉपिक है किताब के वारिस बने मगर संभाल ना सके। कभी आपने देखे कि विरसे में जो चीज़ मिलती है उसके साथ क्या होता है? शायद आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो। मैंने देखा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कैफियत होती है। जो चीज़ मुफ्त में आती है ना, वो मुफ्त में चली जाती है। इंग्लिश में भी कहते हैं इजी कम इजी गोज़, जो आसानी से आता है ना, वो आसानी से चला भी जाता है। बिल्कुल किताबे हिदायत के साथ भी यही मामला होता है। एक और बात लोग कहते हैं कि नो पेन नो गेन, किताबे हिदायत के साथ भी यही होता है। वो लोग जो पैदाइशी मुसलमान होते हैं ना, वो लोग हिदायत की उतनी कदर नहीं करते। जैसे विरसे में मिली बाकी चीज़ें, वैसे हिदायत भी मिल गई। लेकिन वो लोग जो रिवर्टेड होते हैं ना, वो लोग वाकई इसकी बहुत कदर करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इन आयात में ऐसी ही चीज़ों का तذکرہ किया कि वो लोग जो किताब को पा तो लेते हैं लेकिन इस किताब की कदर नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला खबर देता है कि देखो आज अगर तुमने इस किताब की कदर नहीं की तो ज़रा सोचो कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आप आज मुसलमानों की मजमूई हालत देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किताब की कदर हो रही है। देखिए एक जुमला लिख लें, बहुत सारी जगह आपको फ़ायदा देगा कि जिनको हम बड़ा समझते हैं ना, उनकी नज़रों में हम बड़ा बनना चाहते हैं। सच है? जिसकी हमारी नजर में कदर होती है ना, हम उसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को भी तैयार होते हैं। और कीमत हमेशा रुपए, पैसों या डॉलर्स और पाउंड्स में नहीं होती। इंसान की सोचें, उसकी तवज्जो, उसका तड़प, एक-एक चीज जो होती है वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो वही बात कि जब कोई किताब कोई विरसे में मिलती है ना चीज, तो उसका हाल क्या होता है कि फिर हम उसकी कदर करना ही नहीं जानते, और उसके बाद फिर वही होता है जो कि माले मुफ्त के साथ होता है। इस वक्त ऐसे लगता है कि मुसलमान जो है किताब की धज्जियां उड़ाने वाले बने हुए हैं। आपको शायद हो सकता है ये बातें बड़ी एक्सट्रीम की लगती हैं, और आपके पता नहीं कहाँ हो रहा है, हमें तो सब ठीक लग रहा है। कभी आप किसी को कहें ना सब ठीक है, तो समझ जाइए कि कुछ भी ठीक नहीं है। सब ठीक होने का मतलब ये कि आपकी समझ ही ठीक नहीं है। यकीन करें, दुनिया में जो इस्लाम के साथ आज के मुसलमानों का मामला है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने इस्लाम के लिए ना कुर्बानियां दी, और हमें रखा हुआ मिल गया तश्तरी में। नतीजा क्या हुआ कि हम आज इसी पे बड़े मुतमईन हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर बताता है कि तुम में से कोई अल्लाह की जरूरत नहीं है, जो करेगा उसी को मिलेगा। कल तौरात मिली थी, उन्होंने कदर ना की, वो हुदम व ज़िक्रा थी, लेकिन आज वो जिक्रा नहीं रही, खुदन नहीं रही, क्योंकि लोगों ने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह ना करे कि आज मुसलमान इस किताब के साथ जो मामला कर रहे हैं और इसी तरह चंद नस्लों तक चलता रहा, तो यही कहा जाएगा कि एक किताब कुरान दुनिया में होता था। हदीस में आता है, क़यामत से पहले अल्लाह ताला कुरान को ख़त्म कर देगा, ये अपने सफ़ों से मिट जाएगा, हाफिज़ों के जहनों से ख़त्म, खाना काबा गिरा दिया जाएगा, क्योंकि लोग हज को एक तमाशा बना लेंगे। आज भी देखिए हज की रूह कम है, इसी तरह कुरान पे जब अमल नहीं होगा, अल्लाह ताला इस कुरान को उठा लेगा। हाईलाइट कर लीजिए, हुदम व जिक्रा लि उलिल अलबाब, हिदायत और नसीहत अक्लमंदों के लिए। इससे क्या पता चलता है कि हिदायत पे आने का फैसला अक्लमंद लोग करते हैं। आज अमूमन ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, ये बेवकूफ़ है, इनको समझ ही नहीं, इनके पास और कोई काम नहीं है ना, तो ये काम करने लगते हैं। लोग कहते हैं जो कोई कुछ ना कर सके उसको मदरसे में डाल दो, बैठ के पढ़ता रहेगा। कोई नाबीना पैदा हो जाए या बाद में हो जाए, कहते हैं इसको हाफ़िज़ साहब बना दो, जो तुम ना कर सके वो हम कर दें। जो बच्चा स्कूल में 4 साल फेल हो जाए, माँ उसको ले आती है मदरसे में कि इसको तुम मौलवी बना दो। ये तो कदर है हमारे दिल में दीन की, हमें ये दीन क्या देगा। मैं तो कहती हूँ अभी भी अल्लाह का हिल्म है जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं, और फिर भी उसकी रहमतें हम पे हैं। अगर हमारा यही रवैया अल्लाह के दीन और उसकी किताबों के साथ रहेगा, तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए कि हम खुद परेशान हो जाए कि हमने अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताया जाता था, तो अल्लाह ताला कहते हैं फसबिर इन्ना वादल्लाह ही हक, पस ए नबी तू सबर कर, अल्लाह का वादा बिला शुबा सच्चा ही है। तो अपने गुनाह की माफी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयत इलाही में झगड़ते हैं, इनके दिलों में बजुस निरी बड़ाई के और कुछ भी नहीं, और वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं, सो तू अल्लाह की पनाह मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज्यादा देखने वाला है। आसमानो जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं, अंधा और बीना बराबर नहीं, और ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो, इन्ना सात अलातियतुल्ला रई बफीहा, क्यामत बिल यकीन और बिला शुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाते। वकाला रब्बुकुम अदूनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं, वो अभी अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। ये थी आयत नंबर 55 से 60, 55 से 60। इन आयतों का टॉपिक है तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। पीछे अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के रवैयों का जिक्र करने के बाद दुआ की जो बात की, थोड़ी सी बात हम इस पे भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उससे बेनियाज है। दुनिया वालों की एक अजीब कहानी है, आप उनसे मांगे तो वो नाराज होते हैं। एक दफ़ा किसी के दर पे मांगने जाएंगे ना, वो खुशी खुशी दे देगा। दूसरी दफ़ा देखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा शायद दे देगा। तीसरी दफ़ा हो सकता है इनकार कर दे, और चौथी दफ़ा दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा, घर पे नहीं है, और इज्जत भी गई और मिला भी कुछ ना। इसके बरक्स एक वो बादशाह कहता है तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा। किसी को हमने बड़े प्यार और लाड से किसी को ये बात कहते देखा हो, मुझसे कुछ मांगो, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मांगो क्यों नहीं चाहिए। ये प्यार और लाड का अंदाज है। अल्लाह ताला कहता है कि जो बंदा मुझसे नहीं मांगता ना, ये भी तकब्बुर है। मैंने देखा है कि जब इंसान दुनिया में थोड़ा सा बड़ा बन के जीता है ना, तो जैसे दूसरों से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खुद देने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों लूँ। इस तरह अल्लाह से भी नहीं मांगते, खुद तो मांगना ही नहीं पसंद करते, वो कहते हैं तुम ही मांग दो। ताल्लुकात भी नहीं ठीक होते ना। देखिए अल्लाह से मांगना जो है ना, ये अल्लाह से ताल्लुक की निशानी है। आप हर एक से मांग सकते हैं? कभी नहीं मांग सकते। ना हर एक देता है, ना हर एक से बंदा मांगता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे मांग के खुशी मिलती है। चीज़ मिले ना मिले, खुशी बड़ी है, दे दो नहीं मिले तो नाजी कोई है तो मांग रहे हैं ना। बच्चे माँ बाप से मांगते रहते हैं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, फिर भी खुश होते हैं। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक अच्छा होता है ना बंदे का, तो वो खुद मांगता है, और जब अच्छा ताल्लुक नहीं होता तो दूसरों को कहता है तुम मांगो। अब होता क्या है, मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा एक मिजाज बन गया दुआ करवाने का, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कुरान पाक की एक आयत है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। सिंपल रूल याद कर ले, तुम्हें जो मुसीबत आती है ना, वो तुम्हारे किसी हाथों का किया धरा है। मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, घर वालों की तंगी है, माँ बाप की को मुश्किल है, सो एवर। जरूरी नहीं कि उसी ने तंग किया हो, आपने अपने माँ बाप को तंग किया होगा, आपके बच्चे आपको तंग करें, आपका शोहर आपको क्यों तंग कर रहा है, हो सकता है आपने अपनी मेड को सताया होगा। ये यूं स्विच होती हैं चीजें। हम कहते हमने तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर की, हमने तो इनको क्या नहीं करके दिखाया, ये क्यों बिगड़ गए। इसलिए बिगड़ गए कि आपने भी किसी के साथ बिगाड़ा हुआ था। अब होता क्या है, अल्लाह ना करे मैंने कोई मामला खराब किया, मेरे पे मुश्किल आ गई, बिलफर्ज आप सोच लें कि मेरा दिल घबराता है, परेशानी है, डिप्रेशन है, या कोई मेरा काम रुका हुआ है। अब आप में से किसी को मेरे ऊपर अहम आता है, या आपकी मेरे से दोस्ती है या मोहब्बत है, आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इनकी ये बीमारी दूर कर देना। अब आपने मोहब्बत का इजहार किया, आपको क्या मिलेगा, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे देगा। अच्छा इसने मांगा, फरिश्तों जाओ इसकी भी तुम कबूल करो, आपको अल्लाह ताला हिसाब चुका के वापस कर देगा कि जाओ जाओ तुम फारिग हो, लेकिन मुझे कब मिलेगा, अल्लाह ताला मेरी तरफ देखेंगे। अच्छा इस पे आई क्यों, अच्छा ये बात थी, उसको असल वजह तो बताई नहीं, बस यही कहती रही ये मुश्किल आ गई, ये मुश्किल आ गई। कैसे, जैसे कोई शख्स किसी डॉक्टर के पास जाए और उसको कहे मेरे पेट में दर्द है, अब डॉक्टर उसको दवा देगा ना, लेकिन वो ये ना बताए कि पेट का दर्द क्यों है, क्योंकि मैंने रात को कच्ची रोटी खा ली थी, मिर्चें खा ली थी, कुछ भी कर ले ऐसे ना। अब जब तक आप रीज़न नहीं बताएंगे, डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है? जो लोग आपको कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करो, तो वो असल में आपको रीज़न नहीं बताते कि ये मुश्किल आई क्यों, आगे से पूछ के देखें ये आई क्यों थी, आइंदा कभी नहीं कहेंगे। अब यकीन करें, खुद मांगिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो खुद नहीं मांगता दूसरों की भी उसको नहीं लगती। तो लिहाजा तकब्बुर की बजाय, और बाद वह फिर हालात ख़राब होते हैं, जैसे बच्चे पहले बाप की बात नहीं मानते, फिर माँ को आगे कर देते हैं, आप मांग के दें, आप लेके दें। हाँ क्यों, कि बाप से बिगड़े हुए हैं ना ताल्लुकात। तो अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर मांगेंगे भी तो वो देगा, नहीं मांगेंगे तो भी देगा इंशाअल्लाह ताला। वो बहुत देने वाला है, हमें लेना नहीं आता। अब कौन सी जात है, उसका तस्करा है, अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहार। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। यही अल्लाह है तुम सबका रब, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर कहाँ तुम फेरे जाते हो। इसी तरह वो लोग भी फेरे जाते रहे जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीजें खाने को अता फरमाई। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत ही बरकतों वाला अल्लाह है, और सारे जहां का परवरिश करने वाला है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा, जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस इसी की इबादत करते हुए इसको पुकारो। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये थी आयत नंबर 61 से 65, 61 to 65। इसका उनवान है अल्लाह ने तुम्हारी सूरतें बनाई और क्या खूब बनाई। चलिए आप बताइए मुझे, आपका अपनी सूरत के बारे में क्या ख्याल है? सूरत मीन शक्ल। कितने लोग हैं जो अपनी सूरत से खुश हैं, कितने लोग हैं जो परेशान हैं? मैंने देखा है कि बास लोग हर वक्त शक्ल में खोए रहते हैं। पहले अपनी शक्ल की फिक्र होती है, फिर बच्ची पैदा होती है ना तो कहते हैं किस पे गई है, अच्छा, वो एक थी ना, तो किसी के बच्चे को देखने जाती थी तो फिर आके बहुत कमेंट्स देती थी, कहती थी कि जब बच्चा खूबसूरत होता है ना तो सब कहते हैं बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा है, और अगर बच्चे की शक्ल जरा अच्छी नहीं होती तो कहते हैं बड़ा एक्टिव है, बड़ा एक्टिव लग रहा है। और किसी ने कहा कि अगर ससुराल ना होते तो औरतें अपने बच्चों की बुराइयां किसके नाम पे डालती, खूबसूरत है ना, कहते हैं बिल्कुल नानी लग रहा है, और जरा बेचारे की शक्ल या रंग दबता हो तो कहते हैं ये दूसरी दादी है। पता नहीं क्यों, अपने आप को आईने में देखिएगा तो सही, यकीन करें अगर किसी को अपनी शक्ल नहीं पसंद ना तो आज वो आईने में ज़रूर दोबारा देखे इस नज़र से कि मैं अपने अल्लाह का फैसला हूँ, मुझे मेरे रब ने ऐसा पैदा किया, एक आंख निकाल देता तो फिर देखते। मैंने उस दिन शायद आपको जिक्र किया था, माँ के पेट में जब बच्चे की शक्ल बनती है ये इस तरह, जैसे आपके हाथ में कोई आटा हो ना, तो मैं आटे से बना के दिखाऊँ, लंबा सा आप आटा करें जैसे पराठा बनाने के लिए आप करते हैं, फिर उसको गोल करके ना तो यूं बीच में दो होल्स बना ले और एक नीचे लंबी सी होंठ की, यानी आंखों की जगह सुराख होते हैं और ये होंठ बस एक ऐसे ट्विस्टेड सी चीज है, और इसके पीछे इतना बड़ा सर होता है पूरा, ये पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है। मैं उसको देखते हुए सोच रही थी कि अगर हम इस हाल में पैदा हो जाते, किसी को शक्ल ना दिखा सकते, यकीन करें शक्लें उसकी बनी हुई है, ना अपनी शक्ल की फिक्र करें ना अपनी बच्चियों की, जरा बच्चियों की शक्ल दबती हो ना तो माँ का अकीदा खराब होने लगता है, अब अल्लाह करे इनके रिश्ते अच्छे हो जाएं, यकीन करें ये बहुत तकलीफ की बात है। हर वक्त हम शक्ल कॉन्शियस रहते हैं, कैसी लग रही हूँ, कैसी जच रही है, सिर्फ आप देखें ये स्किन कलर है ना, अल्लाह ने क्यों दिया, आप इस पे जो रंग लगाएंगे सजेगा, स्किन कलर की ये खूबी है, ये हर रंग को अपने ऊपर लेता है, डार्क पहन ले तो लाइट पहन ले तो, हम जरा ब्लू कलर के होते हैं कैसे लगते, आप खुद सोच के देखें हम बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, हमारे फीचर्स ना हमें दिखते, अल्लाह ने इतनी प्यारी शक्लें बनाई, और हाईलाइट कीजिए अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने बनाया और कितना खूब बनाया। अच्छा बाज़ लोग तो एक और जुल्म करते हैं, एक माँ जो इतनी तकलीफ और दर्द के बाद बच्चे को पैदा करती है, जरा बच्चा दबता उसके मुंह पे कहते हैं किस पे गया है, ऐसा जरूर पैदा करना था, ये उसका फैसला है। तो कभी जिंदगी में अपनी या किसी की शक्ल पे अगर आप लोग ऐसे हैं ना तौबा करें, बाज़ लोग कहते हैं लानत बरस रही है, मत बरसाइए, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी शक्लों को ज़ाया कर सकता हूँ, तुम देखते रह जाओगे कुछ भी नहीं रहेगा, फीचर सारे ख़त्म हो जाएंगे, हुसन का क्या मान है, अल्लाह ना करे कि कोई तेजाब के छींटे पड़े किसी को शक्ल ना दिखा सको, और ये शक्ल ही है ना जिसने मुश्किल में डाला हुआ है, कहते नहीं ये लोगों को दिखाने की चीज़ है। एक खातून थी तो अच्छी खासी शक्ल थी उनकी, फिर कोई ऐसी तकलीफ हुई कि वो औरतों में भी निकाब पहनती थी, स्किन पे इस तरह की चीज़ हो गई, तो सोचना है कि हमारी शक्लों का हुसन अल्लाह ने किसके लिए बनाया, और अल्लाह से भी राज़ी रहिए। कि मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी यंग क्लास में बच्चियों की, आपको भी दे देती हूँ, मैंने ने कहा था कि जब आप बहुत अच्छे पहन ओढ़ के जाती है ना कहीं कपड़े, तो सबसे तो पूछते ही ना कैसी लग रही हूँ, सब ठीक है ये वो है, तो बस एक नज़र अल्लाह ताला से भी पूछा करें कि अल्लाह ताला मैं कैसी लग रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा, और अल्लाह की निगाहों से जब हम अपने आप को देखने लगते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला फिर हमें इसकी ज़्यादा परवाह नहीं रहती कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप बहुत भी खूबसूरत हो या है, किसी को क्या मिला, जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती से दूसरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धोखा है, असल खूबसूरती जो वो बंदे के अंदर की खूबसूरती है, उसके अखलाक की खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला ने कहा फतबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब उस तबारक ताला की नजरों से अपने आप को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी किसी को कोई गिला और शिकवा नहीं रहेगा। इस पे बात हुई है तो एक और हल्की सी बात, बस मर्दों को भी इस चीज़ का एक अफसोस होता है कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, और खूबसूरत है तो फिर दिल चाहता है कि अब इस खूबसूरती को लोग देखें, और बस तो लड़की देखने जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई बुत खरीदना है जिसको पूजना है। देखिए चीज़ खूबसूरत क्यों होती है, क्योंकि उसको बेचना होता है ना, सजाते हैं ना उसी को बेचते हैं ताकि इसकी रीसेल रहे, और बस खवातीन अपने बेटों के लिए जब दुल्हन ढूंढने जाती हैं, यानी लड़की देखती हैं अपने बेटे के लिए, उस वक्त भी उनका क्या मेयार होता है, गोरी हो खूबसूरत हो फिर क्या होगा, बाद में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये शुरू का एक धोखा है अपनी जान का, बाद में उन्हीं के साथ ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि पहले बेटे को कोरी ले दी, फिर वो कहती हैं अब ये कमरे से निकलता ही नहीं है, अब इसका दिल्ली काम पे नहीं लगता, यानी अब सोचिए, यानी माएं भी बेचारी अजीब मुश्किल, अगर आप चाहती हैं ना कि आपके बच्चे बाद में भी आपके साथ बैठे तो फिर उसको जरा कम खूबसूरत लेके दें, लगता है आप लोगों में से किसी की बात थी है, या तो आप पहले चांद का टुकड़ा ना लेके दें, फिर उसको देखने दें, गरीब को खुश होने दें, अल्लाह ने उसको दी है, उसकी नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, तो फिर आप गम किस बात का करती हैं, तो पहले इंसान थोड़ा सा काबू में रहे।